नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है राजीव की डायरी में कैसे है 2024 की हमारी शिक्षा। राजीव की डायरी में कैसी है हमारी 2024 की शिक्षा में 2016 में 14% छात्र औपचारिक शिक्षा से बाहर थे, जो कि देश में 2023 में भयावह सुधार के बाद भी मात्र 13.2% बाहर है। 2016 में 23.4% अपनी भाषा में कक्षा दूसरी का पाठ नहीं पढ़ पाते थे। आज 2023 में अति भयावह सुधार के साथ यह 24.4% तक पहुंच गए हैं। देश के आज भी 50% छात्र है जो कि गणित को नहीं सुलझा पा रहे हैं। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सौसर साइंस कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर अमरकर सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, कैसी देखते हैं सर 2024 की हमारी शिक्षा पद्धति या शिक्षा को?
शिक्षा पद्धति दो प्रकार की हो गई है, एक सरकारी और दूसरी प्राइवेट। जो सरकारी शिक्षा पद्धति है उसमें न शिक्षा बची है न संस्कार बचा है, वहां पे तो केवल औपचारिकता बची है। और जो प्राइवेट शिक्षा है उसमें शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है, इसलिए वहां पर अच्छे प्रोफेशनल तो तैयार हो रहे हैं पर अच्छे इंसान तैयार नहीं हो रहे। दुख का विषय यह है कि सरकार का ध्यान जो है बाकी सारी योजनाओं पर है। सरकार के पास पैसा भी सारी योजनाओं के लिए है, सरकार का ध्यान और सरकार का पैसा जो है वो शिक्षा के लिए नहीं है। इसलिए इसलिए हमारा जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो आज ऊपर से बहुत बढ़िया दिखती है पर अंदर से पूरी चरमरा गई है।
सर, क्या लगता है कि 2024 की शिक्षा पद्धति जो है, और जिस तरीके से ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो भयावह स्थिति दिखा रहे हैं, और जिन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर जो आज की वर्तमान परिस्थितियां हैं, कैसे देख रहे हैं सर?
मेरा ऐसा मानना है कि जिस शिक्षा में संस्कार नहीं वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, शिक्षा लोगों को प्रोफेशनल बना रही है, शिक्षा लोगों को जो है एक अच्छा इंसान नहीं बना पा रही है। इसलिए आप देखिए कि सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है कि जिस क्षेत्र में आज क्राइम और करप्शन का बोलबाला नहीं है। क्राइम और करप्शन का बोलबाला होने का कारण ही है कि हम अच्छे नागरिक तैयार नहीं कर पाए, हम अच्छे प्रोफेशनल तैयार कर लिए हम लोगों ने, सरकार का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है।
सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर, तो कई जगह भवन टूटे हुए मिलेंगे आपको, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है, पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, और वहां पर शिक्षकों की कमी आप देख सकते हैं। तो इस को देखते हुए 2024 की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं सर?
मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ अच्छे शिक्षक हो तो वहाँ विद्यार्थी भी आएंगे और अच्छा शिक्षण भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ भाई एक शिक्षक पूरी स्कूल चला रहा है, वही वहाँ का शिक्षक है, वही वहाँ के प्रधान फाटक है, वही वहाँ का चपरासी है, वही बाबू है और वही सब कुछ है। और कक्षा पहली से लेके 5वीं तक सारी कक्षा वो अकेला ही चला रहा है। तो कल्पना कीजिए, एक शिक्षक यदि सारी कक्षाओं को चला रहा है तो पढ़ा क्या रहा है, कुछ नहीं। रही बात वहां पर सुविधाओं की, तो बच्चे बच्चे वहां पे तो केवल खाना खाने जाते हैं, पढ़ने कौन जाता है, पढ़ाई होती ही नहीं वहां पे, बस बच्चे खाना खाने जा रहे हैं। और सरकार जो है, सरकार की जो धारणा है कि शहरों में बड़े बड़े स्कूल बनाना और उसको आप ई एम राइज नाम दे सकते हैं, या उसको फिर आप एक्सीलेंस स्कूल नाम दे सकते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं, पर एक सी एम राइज या एक एक्सीलेंस स्कूल बनाने से पूरे तहसील की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी। हर स्कूल को आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, हर स्कूल में टीचर हो, हर स्कूल में अच्छी सुविधाएं हो, तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। पर अभी हालात ये है कि न शिक्षक है, न बिल्डिंग है, न किसी प्रकार की सुविधा है, तो फिर स्कूलों में बच्चे भी नहीं है। दुख का विषय है कि आज की तारीख में सरकारी स्कूलें धीरे धीरे बंद हो रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है और सुविधाएं भी नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है।
सर अब देखते हैं अपन की शहरी हो या ग्रामीण हो, क्या शिक्षा के स्तर को बेहतर बढ़ाने के प्रयास जो हो रहे हैं वो क्या कितने प्रभावशाली देखते हैं। साथ ही सर रोजगार के अवसर भी अगर उसके पीछे देखे तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कितना रोजगार पाने में सफल हो पा रहे हैं।
मेरा ऐसा कहना है कि सरकारी शिक्षा का जो तंत्र है वो तो अभी लगभग कोलैप्स हो चुका है, और जो भी अच्छे थोड़े बहुत अच्छे लोग, स्किलफुल लोग, हुनरमंद लोग यदि कहीं तैयार हो रहे हैं, तो वो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज में हो रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और मुझे बड़ा दुख होता है कि स्कूलों में जिन लोगों का पेमेंट 1-1 लाख रुपए है, वो दो 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 पीरियड नहीं लेते हैं। दो पीरियड लेने में जान में आती है, कहाँ कहाँ से हुनरमंद लोग तैयार होंगे बताइए। कॉलेजों में भी यही हाल है, जिनका दो दो लाख रुपए पेमेंट है, वो दो पीरियड लेने में जान में आती है उनकी। और कॉलेज पूरे हर जगह पे ये हाल है कि जहाँ हजार बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कॉलेज में रोज 100 बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए, और टीचर भी गायब रहते हैं। तो बताइए कि भाई ऐसी शिक्षा व्यवस्था में कैसे हुनरमंद लोग तैयार होंगे, और कैसे देश के नागरिक तैयार होंगे। वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, उसके कारण अच्छे कम से कम प्रोफेशनल तो तैयार हो रही है, हुनरमंद लोग तो तैयार हो रही है, पर इधर तो बड़ा गड़बड़ काम है। मैं सरकार से तो निवेदन करूंगा कि सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत है।
सर क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे शिक्षा पद्धति को बेहतर लाने में, बेहतर करने में?
मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये देना सरकार का काम है, और जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो सरकार ने कितने बढ़िया रोड बनाए हैं, कितने बढ़िया घरों में बिजली गई है, कितने बढ़िया बड़े बड़े डैम बने हैं, ये तो सारी चीजें बहुत जरूरी है, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि अच्छी स्कूलें हो, और स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हो, और वहाँ पे पढ़ाई हो, ऐसा सुनिश्चित ढांचा एक तैयार किया जाए, और सबसे ज्यादा बजट सरकार जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर खर्च करे। पर अभी जो है चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार का ध्यान चुनाव जीतने की तरफ रहता है, सरकार का ध्यान शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की तरफ नहीं रहता है। ये बड़ा दुख का विषय है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार हो जिसमें बच्चे जो है अच्छे हुनरमंद भी बने, और साथ में अच्छे इंसान भी बने। सबसे महत्वपूर्ण बात है अच्छा इंसान बनना, और उसके बाद है वो हुनरमंद इंसान बनना। तो ऐसी शिक्षा पद्धति सरकार ने डेवलप करना चाहिए। उसमें उसमें हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को भी जोड़ना जरूरी है, जैसे रामायण है, गीता है। ये हमारे ये केवल हमारे लिए ग्रंथ नहीं है, तो ये हमारे को जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। तो हमारे स्कूलों में बच्चों को ये भी पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि वो अच्छे इंसान बने। और जो बच्चे अपने 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 क्षेत्र में, अपने में रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको उधर थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बच्चा सभी विषयों में अच्छा नहीं हो सकता, पर एक बच्चा किसी न किसी विषय में अच्छा जरूर होता है, तो जो बच्चा जिस विषय में अच्छा है उसको उधर आगे बढ़ाना चाहिए, उसको उधर प्रमोट करना चाहिए एक विषय, और उससे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि एक बच्चा सभी विषय में अच्छा हो।
सर अभी हालिया जो रिपोर्ट आई है और मैंने भी आपको बताया कि 2016 में 14% छात्र औपचारिक शिक्षा से बाहर थे, वही सर अभी जो इस रिपोर्ट में 42.7% अंग्रेजी के वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं और सरकार इसको लेकर जवाब मांगने पर या कुछ कहने से बच रही है। साथ में अगर हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो शिक्षा पद्धति को कितना बेहतर लाया जाए ताकि हम कह सके कि हाँ सच में हम विश्व गुरु है और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है।
मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं तब तक कोई भी देश विश्व गुरु बन ही नहीं सकता, और जब तक आपके बच्चे अच्छे इंसान नहीं बनते हैं तब तक आपका राष्ट्र भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो है मतलब अच्छे प्रोफेशनल तो बने ही, अच्छे साथ में अच्छे इंसान भी बने, ऐसी शिक्षा पद्धति सरकार ने डेवलप करनी चाहिए और हर बच्चा बच्चे तक बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले ये सुनिश्चित भी करना चाहिए। सरकार अभी भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी नई शिक्षा पद्धति उन्होंने लाया है और थोड़ा सा आशा की किरण उसमें दिखती है कि कुछ अच्छा होगा करके, अभी तो भविष्य में पता चलेगा क्या अच्छा होने वाला है।
ये थे अंबड़ारे सर अंबड़ का सर जो है मोबाइल वाणी पर कैसी है 2024 की शिक्षा पद्धति इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। अंबड़ का सर मोबाइल का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सबको योग।